हम आज करेंगे माँ को, ठीक है। माँ, इस अलामत के कई मानी और मफहूम होते हैं, हर एक की मुख्तलिफ वजाहत है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल है कि कभी माँ का मानी नहीं या फिर ना करते हैं, यानी नहीं के मानों में या फिर ना के मानों में माँ आता है। मसलन, माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ है। अब देखें कि माँ के बाद वद्दा, ठीक है, वद्दा का ये अल्लाह ताला का एक फेल हमें दिखता है नबी सल्लम के मामले में, तो फिर यहाँ नहीं के मानों में है कि नहीं छोड़ा या नाराज़ नहीं हुआ। वमई यह दिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसको कोई भटकाने वाला नहीं। पहली मिसाल जो थी सूरह दोहा 3 की थी और ये सूरह ज़ुमर 37 की है। फिर इसी तरह आयत नंबर 62 सूरह आले इमरान में आता है, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। ये तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कुरान पाक में बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अगले को देखते हैं, कभी कभी माँ का मानी जो भी होता है, यानी नहीं नहीं होता बल्कि जो होता है। मसलन, वमा उन ज़िला मिन कबलिक, सूरत बकरा की आयत 4 में ही हम पढ़ते हैं कि जो उतारा गया आपसे पहले। अब अगर हम इधर ये कर दें और नहीं उतारा गया आपसे पहले, तो मानी बदल जाएगा ना। नहीं कब आता है वो आगे आपको थोड़ा सा इसके एंड पे जाके पता चलेगा कि माँ का मानी जो कब आना है और नहीं कब आना है। इसी तरह देखिए सूरत तौहा की आयत 81 है, कुलू मिन तैयबाती मा रज़क़नाकुम। अब यहाँ ज़रा गौर से इसका तर्जमा सुनिएगा, जो ठीक तर्जमा है वो क्या है, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको रिस्क दिया। और अगर आप माँ को नहीं कर दें तो क्या होगा, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो नहीं हमने तुमको दी, यानी हमने नहीं दी किसी और ने दे दी हैं, राइट। मानी बिल्कुल बदल जाएगा ना। इसी तरह देखिए, यालमु मा यलिजु फिल अर्द, वो जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है, सूरह सबा की आयत नंबर 2 है, 2 आयत है, कि अल्लाह ताला ज़मीन में दाखिल होने वाली हर चीज़ को जानता है। तो ये भी आसान है, पहला माँ के लिए क्या है, सब मिल के बोले, नहीं के मानों में, ठीक है। दूसरा, जो के मानों में। तीसरा, इसका इस्तेमाल कभी माँ का मानी क्या या फिर किस भी किया जाता है, यानी किस, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना हु, हु, होम, व्हाट, व्हाट के मानों में भी होता है। इसमें सवाल का एक अंदाज हमें दिखेगा, सूरह तौहा की आयत नंबर 17 में आता है, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, और वो क्या तेरे दाएं हाथ में है मूसा। तो यहाँ माँ का मानी अगर आप देखिए कि हम पहला करें और नहीं है तेरे हाथ में, सेंस नहीं बनती ना, और नहीं क्या तेरे हाथ में है मूसा, समझ नहीं आती ना। फिर इस और जो तेरे हाथ में, जो हो सकता है अगर मानी जुमला भी ठीक है, लेकिन हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि क्या का मानी आ रहा है, क्वेश्चन है ना, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंग्लिश में अगर आप वॉस का लफ्ज़ बीच में लगा दें, वॉज मैंने माजी में किसी चीज़ के होने को कहेंगे ना, शुरू में लगा दें तो क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह हैज़, हैड, हैव, ये सब बीच में आता है तो सेंस बदल जाती है, शुरू में आता है तो सवाल हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरू में आ रहा है वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा। इसी तरह सूरत अल इन्फितार की आयत नंबर 6 में आता है, या युहल इंसानु मा गर्रक रब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किसने बहका दिया अपने रब्बे करीम से। तो आप देखेंगे कि सवालिया है ना, तो बोलने में और आयत पढ़ने में भी एकदम टोन थोड़ी सी मुख्तलिफ होने लगती है। तो जब आप अरबी कुरान पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल आप फीलिंग से दे सकते हैं। मसलन अगर मैं इस आयत को दो तरह पढ़ के दिखाती हूँ आपको, वमा तिल कभी यमीन ही का या मूसा, हाँ, या अय्युहल इंसान उमा गरा कभी रब्बी कल करीम, अब आपको मेरे एक्सप्रेशन से कुछ नहीं पता चला। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, वमा तिल कभी यमीन ही का, तो आपके जहन में फ़ौरन लगेगा कि यहाँ सवाल है ना। तो कुरान का फहम ऐसा होना चाहिए, तर्जमा इतना अच्छा याद हो कि जब आप अरबिक पढ़ें तो लोगों को आपकी अरबिक से सेंस समझ आ जाए तर्जमे की। इसी तरह या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, आप देखिए खुद बहुत हाथ यूँ हो जाता है जैसे क्वेश्चन है, मा गर्रक, तो बिल्कुल ये क्वेश्चनिंग स्टाइल जो होता है ये इंसान के बोलने में भी इसका इजहार हो जाता है। चौथा इसका इस्तेमाल है, कभी कभी माँ इजहार ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसका तर्जमा फिर किस कदर किया जाता है। मसलन सूरत बकरा की आयत 175 में आता है, फमा असबरहुम अलन्नार, बस किस कदर सब्र करने वाले हैं ये आग पर। और भी इसको टिपिकल करें तो क्या होगा, फमा असबरा हम अलन्नार, बस क्या है सब्र इनका आग पर। हैरत है कि आज सब्र कर रहे हैं, कल गर्मी लगती थी, इनको मोटे कपड़े नहीं पहन सकते थे, इनको टांगे नंगी करनी थी, इनको बाजू नंगे करने थे, इनको चेहरा नंगा करना था, या दूसरों को देखकर इनको घुटन होती थी। फमा असबरा हम अलन्नार, आज कितना को सब्र करेंगे ये जहन्नुम की आग पर। इसी तरह सूरत अब्बस आयत 17 में आता है, कुतिल अल इंसानु मा अकफरा, हलाक हो इंसान किस कदर ना शुक्रा है। अगर आप यहाँ माँ के बाकी तीन मानी लगाएंगे ना तो सेंस नहीं बनेगी, यानी ये इजहार ताज्जुब है कि कितनी हैरत इंसान के हाल पे, इतना अल्लाह का मजबूर है, इतना उसके आगे पाबंद है, इसके बावजूद उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद पांचवा इसका इस्तेमाल है कि अगर अलामत माँ से पहले लफ्ज़ बाद हो, यानी माँ से पहले वाला लफ्ज़ जो है वो बाद हो, बा ऐन दाल और दाल की ज़ेर होती है, तो इस माँ का तर्जमा के यानी के दैट इज़ के मानों में किया जाता है। मसलन इसकी मिसालें हम देखेंगे सूरत बकरा की आयत नंबर 109, मिम बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बाद के इन पर हक वाजे हो गया। हाँ, अब आप देखिए कि के का लफ्ज़ आ रहा है ना, मिम बादी के मा तबय्यन लहुमुल हक, उर्दू में भी अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ऐसे ही बनते हैं ना, मिम बादी के मा बय्यना हुलिन्नास। मुझे इसका इस तरह से अंदाज़ा होता है कि जब मैं आपके साथ खुलासे कुरान करवाती हूँ तो आधा जुमला मैं ख़ुद अपनी उर्दू में बोल के तो फिर आयत को पढ़ती हूँ, तो बिल्कुल मुझे फ़ील होता है कि मैंने वो बात कह दी अपने लफ्ज़ों में जो फिर यहाँ अरबी में भी लिखी होती है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा जब फेमिलियर होने लगेंगे कुरान के साथ और हम, तो ये चीज़ें हमें बग़ैर किसी की हेल्प के पता चलेंगी कि यहाँ माँ का मानी नहीं है, जो है, क्या है, किस कदर है, या फिर केह के मानों में। इसी तरह आयत 159 सूरत अल बकरा में आता है, मिम बादी मा बय्यना हुलिन्नास, इसके बाद के हमने इसे खोलकर बयान कर दिया लोगों के लिए। ठीक है, फिर सूरत बकरा की आयत 145 में आता है, मिम बादी मा जाअक मिनल इल्मी, इसके बाद के आपके पास इल्म आ चुका। फिर सूरत बकरा ही की आयत 75 में आता है, सुम्म युहर्रिफूनहु मिम बादी मा अकलूह, फिर वो इसे बदल देते हैं इसके बाद कि इसे समझ चुके हों, यानी जानते बूझते इसको बदल देते हैं। ये भी बात है। छठी इसकी अलामत क्या है कि कुरान मजीद में माँ के साथ जालत और जिलतुम और ला के साथ तजालू और यजालूना वगैरह इस्तेमाल हुआ। इन फेलों को माँ और ला के साथ मिलाकर दोनों का तर्जमा हमेशा किया जाता है। आप पहले इसको समझ लें, लफ्ज़ हमेशा के साथ, जालत जिलतुम तजालू यजालून, इनका रूट क्या है, चारों का एक ही रूट है। बोलिए, जा वाम होता है, जवाल का लफ्ज़ जैसे जाल यजीलु जवालुन से। अब जवाल का लफ्ज़ अगर आपको जहन में रहेगा ना तो इनका सब का मानी याद रहेगा, ये उसी की मुख्तलिफ किस्में हैं। मसलन सूरत अल अंबिया आयत नंबर 15 में है, फमा जालत तिल कदावाहुम, तो हमेशा उनकी यही पुकार रही। ठीक है, ये कौमों के तस्करे में आया। फिर इसी तरह सूरत मोमिन आयत 34 में आता है, फमा जिल तुम फी शक्किन, बस तुम तो हमेशा ही शक में पड़े रहे। फिर इसी तरह सूरत अल बकरा आयत 217, वला यजालू न युकातिलू नकुम, और ये लोग तो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहूद नसारा के तस्करे में आ गया। तो पता क्या चलेगा कि जब माँ का लफ्ज़ जिस जुमले में है फिर उसके साथ जाला जिल तुम तजाला तजालू यजालून वगैरह आ जाए, और ये बहुत कम आते हैं, पूरे कुरान पाक में चंद ही लफ्ज़ हैं, तो फिर वहाँ मानी जो है वो किस सेंस में हो जाएगा, हमेशा हमेशा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके अलावा एक और भी इसका तरीका है इसको सिर्फ अपने जहन में याद रखने के लिए, और वो क्या कि माँ के बाद अगर इसी जुमले में लफ्ज़ इल्ला आ रहा हो, ठीक है, इल्ला इल्ला किसको कहते हैं, एक्सेप्ट, या फिर माँ के बाद इसी जुमले में इसम से पहले बा ज़ेर बी हो, तो इस माँ का तर्जमा नहीं से करते हैं। और बाकी जो सारे हमने मुख्तलिफ किस्में देखी ये टेक्स्ट से पता चलती हैं, सियाको सबाक क्या होता है, टेक्स्ट के बाद कैसे चल रही थी, जुमला कैसे बनेगा। मसलन ये जो मिसाल है इल्ला वाली, ये बल्कि इसको नंबर 7 होना चाहिए। ये बहुत अहम मिसाल है कि जब किसी जुमले में माँ और इवन ला के साथ भी आता है, इसके आप जहाँ माँ लिखा है ना ऊपर अपने पास अपनी बुक्स में ला भी लिख लें कि माँ और ला और एक तीसरा लफ्ज़ भी लिख लें हल, जैसे गोल चश्मी हा होती है ना, हल यंदुरून इल्ला अयातियहुम, आती है कुरान में आयत। तो माँ ला और हल ये तीनों जब किसी जुमले में हो और उसी सेंटेंस में लफ्ज़ इल्ला भी हो तो इन तीनों का मानी नहीं होता, ठीक है। मसलन वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, और नहीं तुम चाह सकते मगर वो जो अल्लाह चाहे, सूरह दाहर की आयत नंबर 30 है। सूरह अलनाम आयत 32 32 वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम वलहुन, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर खेल और तमाशा। सूरत बकरा आयत 8 में आता है वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले। ये किस चीज़ की मिसाल हो गई? बाजर बी की। पहली दो मिसालें किसकी थी? इल्ला की। फिर सूरत अलहाका आयत नंबर 41 41 वमा हुआ बिकौली शायरिन कलीलुम मा तुमिनून, और वो किसी शायर का कलाम नहीं। नबी सल्लम के बारे में इशारा है। वाह, और देखिए माँ के बाद बी आ गया ना, ये बी वाली मिसाल कम आती है लेकिन इल्ला और माँ और ला ये बहुत ज़्यादा आता है। सारे मिलके दोहराएं, शुरू से लेके अभी तक माँ के बारे में हमने जितनी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी, नंबर एक दो करके बोले। पहला इस्तेमाल क्या है माँ का? सब बोले। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, सातवां। चलिए पहला इस्तेमाल कब होता है मानी का? जी आप देखिए कि माँ का तर्जुमा मानी नहीं के मानों में आता है। माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, इसके लिए यानी हमें टेक्स्ट को देखना पड़ेगा कि ये कब आ रहा है, ठीक है। जो का मानी भी हो गया, क्या किस हुआ ये बताइए कि माँ का तर्जमा हमेशा कब आता है? सब बोल दें। जालत या जेल तुम और तजाल आएगा, ठीक है। चलिए ये बताइए कि माँ का तर्जमा केह के मानों में कब आता है? के जब माँ से पहले बात हो। ये बताइए कि माँ के बाद अगर जुमले में इल्ला आ रहा हो तो माँ का क्या मानी होगा? और माँ के बाद अगर जुमले में बाज़िर भी आ रहा हो तो क्या मानी होगा?
नहीं
होगा, ठीक है। तो आपने इन सब की मिसालें जो हैं तीन तीन ढूंढनी है। इंशाल्लाह ताला फिर जब एक्सरसाइज होगी तो उसमें हम इनको दोबारा देखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।